प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उपाध्याय नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे पहने
हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से उपाध्याय नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा है कि किस प्रकार परमेश्वर एसाव अर्थात एदोम को नाश करता है। मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज उपाध्याय की पुस्तक का अध्ययन हम सबके लिए आखिरी अध्ययन होगा। तत्पश्चात हम दूसरे पुस्तक का अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी महान प्रेम, दया और करुणा के लिए, जिसे आपने हम में से हर एक के जीवन में दिया है। विशेष करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो प्रतिदिन आपके वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट इस समय का इंतजार करते हैं, ताकि हम एक साथ मिलकर आपके वचन का अध्ययन कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन में से सुने तो आपका जीवित वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करने पाए, उन्हें हर एक प्रकार के संसार की बुराइयों से बचाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए भी जो इस समय निराश, परेशान और चिंता में हैं, तनाव में हैं, बीमारी अवस्था में हैं। पिताजी, आप उन पर भी दया दृष्टि करें, उनके जीवन को स्पर्श करें, ताकि प्रत्येक जीवन आप में चंगाई को पा सके और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए। आज अपने जीवित वचन के द्वारा हम सब से बोले और बातचीत करें, हम सब की सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों उबद्या के पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि याकूब और एसाव दो भाई हैं जो जुड़वा हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं, परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि एसाव के वंशज एदोम वास्तव में याकूब के वंशज इसराइल के भाई थे। जी हाँ, अतः उचित नहीं था कि वे उनके साथ बैर निभाते या शत्रुता रखते, विश्वासघात करते और उन्हें लूटते। अतः परमेश्वर कहता है, जैसा तूने किया वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जी हां, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। एदोम ने इसराइल के विनाश में साथ दिया, तो परमेश्वर एदोम को भी सदा के लिए मिटा देगा, परंतु प्रभु यीशु के न्याय के दिन फिर उठाएगा कि परमेश्वर के क्रोध के भागी हों। मेरे प्रियो, यहां पर हम दो वंशज के बारे देख रहे हैं जो दो भाई हैं, याकूब जिससे इसराइल वंशज आया और एसाव जो एदोम वंशज का पिता हुआ, और इसके नाश होने के बारे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर एदोम को अर्थात एसाव के वंशज को नाश करता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और इस पुस्तक के एक अध्याय उसके 15 पद को पढ़ेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस पुस्तक में एक ही अध्याय है और 15 पद में लिखा है, क्योंकि सारे जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। यहोवा के दिन का आना निकट है। मेरे मित्रों, मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि यहोवा का दिन एक अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है महाक्लेश के युग से आरंभ होने वाला समय। आज हम अनुग्रह के युग में या प्रभु यीशु के युग में हैं। आज ध्यान का केंद्र पवित्र आत्मा है जो हम पर प्रभु यीशु की बातों को प्रकट करता है। सच्चे विश्वासियों की देह जिसे कलीसिया हम कहते हैं, उसके उठाए जाने के बाद यहोवा के दिन का आरंभ होगा। इसका आरंभ अंधकार और परमेश्वर के निकट दंड के दिन अर्थात महाक्लेश से आरंभ होगा। इस भयानक समय के बाद धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में चंगाई लेकर प्रकट होगा, अर्थात प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएगा। यहां पर लिखा है, सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएगा, तब वह सब जातियों का न्याय करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में प्रभु यीशु ने स्वयं इसका उल्लेख किया है। अब यहां एक बात स्पष्ट नहीं है कि उस दिन न्याय के लिए प्राचीन जातियां जो विलोप हो गई हैं पुनर्जीवित होंगी या श्वेत सिंहासन के न्याय के लिए छोड़ दी जाएंगी, जिसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 11 से 15 पद में किया गया है। आवश्यक नहीं है कि आप मेरी बात माने, परंतु मेरे विचार में उबद्या के अनुसार उस दिन एदोम का पुनर्जीवित होना निश्चित है। यदि आपको मेरी बात पर संदेह हो तो इसराइल राष्ट्र पर ध्यान दें, जो 2500 वर्ष तक विलोप था, 1948 में फिर से एक बन गया है। यदि ओबद्या कहता है, सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, तो इसका अर्थ है कि विलुप्त जातियां भी पुनर्जीवित होंगी, कि उनका भी न्याय हो। कुछ टीकाकारों के विचार में प्रभु यीशु के न्याय के दिन एदोम और उसके संयुक्त राष्ट्र परमेश्वर अथाह क्रोध के भागी होंगे। मेरे प्रियो, आप देखिए यशायाह नबी की पुस्तक 63 अध्याय उसके 1-6 पद में, जहां पर इसके बारे में आपको वर्णन मिलेगा। प्रत्येक जाति परमेश्वर के सम्मुख उत्तरदायी है। परमेश्वर का वचन इसे स्पष्ट करता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1-3 पद में, जहां पर लिखा है, यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है किसी मारे हुए का शव पड़ा हुआ मिले और उसको किसने मार डाला है यह पता ना चले, तो तेरे पुरनिये और न्यायी निकलकर उस शव के चारों ओर के एक नगर की दूरी को नापें। तब जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके पुरनिये एक ऐसी कलोर को ले रखें जिससे कुछ काम न लिया गया हो और जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। कहने का अर्थ है कि वह नगर पता लगाए कि उसका हत्यारा कौन है। मेरे विचार में यह यहोवा का एक महान सिद्धांत है। मेरे मित्रों, हम कहते हैं कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। यह सच है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, क्योंकि हमारा सिर अर्थात कलीसिया का सिर स्वर्ग में है, परंतु पांव तो पृथ्वी पर है। अतः हम विश्वासियों का यह उत्तरदायित्व है कि हम अपने अपने देश में परमेश्वर का प्रभाव यथासंभव प्रसारित करें। मैं यह नहीं कहता कि हमें राजनीति में कूदना है, परंतु इसमें शक नहीं कि परमेश्वर सच्चे विश्वासियों को राजनीति में काम में ले सकता है। यह एक आम धारणा है कि राजनीति में विश्वासियों को नहीं जाना है, अर्थात भ्रष्टाचार का भाग वे बन जाएंगे, परंतु अपने पैरों पर खड़ा होने वाला विश्वासी सरकार में परमेश्वर का उपयोगी पात्र भी हो सकता है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के समक्ष उत्तरदायी हैं। हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है ताकि हम उसकी महिमा करें। मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर सब जातियों का न्याय इस आधार पर करेगा कि उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है या नहीं, क्योंकि किसी भी जाति ने परमेश्वर को पूरे मन से ग्रहण नहीं किया है। हम देखते हैं लिखा हुआ है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। ओबद्याह की भविष्यवाणी के अनुसार ही एदोम का नाश हुआ था। यरूशलेम के पतन के कुछ समय बाद ही राजा नबूकदनेस्सर ने एदोम को भी जीता, जो चट्टान में एक अजेय नगर था। इसके बाद इसराइल के मकेबी गुट ने उसे अपने अधीन किया और फिर सन 70 में यरूशलेम को तहस नहस करने वाली रोम की सेना ने एदोम को नष्ट किया और आज तक एदोम का नाम नहीं है। मेरे प्रियो, एदोम प्रभु राज में रहे या न रहे, मुझे अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार काम करता है। आप इस समय जो कुछ भी क्यों न कर रहे हो, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार ही काम करता है। वह आपके जीवन में भी काम कर रहा है और करना चाहता है, परंतु ध्यान दे कि क्या आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं। उबद्याह उसके 16 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी और ऐसी हो जाएंगी जैसी कभी हुई ही नहीं। मेरे प्रियो, यहां पर जो बातें कही गई है, दूसरे शब्दों में परमेश्वर एदोम से कहता है जैसे को तैसा। हम मत्तीर चिस्सु समाचार 7 अध्याय उसके 1 पद में देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु ने कहा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस कहता है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। एदोम ने जैसा कष्ट दूसरों को दिया है वैसा ही कष्ट वह स्वयं भोगेगा। पद 17 से 21 तक हम उबद्याह की पुस्तक उसके अंतिम मुख्य भाग में देखेंगे। ये पद इसराइल के विषय में भविष्यवाणी है। एदोम की भविष्यवाणी थी कि उसका सर्वनाश होगा, परंतु इसराइल की भविष्यवाणी है कि उसका पुनरुद्वार होगा। परमेश्वर की योजना में इसराइल का स्थान है। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के बारे में सोचता है। अतः प्रश्न यह है, क्या आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं? क्या आप अनंत काल में परमेश्वर के साथ होंगे या उसके विरोध में होंगे? उसकी योजना तो पूरी ही होगी और आप उसके साथ हों तो अच्छा होगा। मेरे प्रियो, हम अब देखेंगे इसराइल की दशा। यद्यपि परमेश्वर ने इसराइल को दंड दिया, उनका सर्वनाश नहीं होगा। आइए हम पढ़ते हैं उबद्याह उसके 17 पद में। यहां पर लिखा हुआ है, परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। लिखा है, उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे। मेरे प्रियो, संसार का उद्धार सियोन पर्वत पर होगा। आज आपके और मेरे लिए भी उद्धार वहीं से है। प्रभु यीशु की मृत्यु गुलगुथा पर हुई थी और उसके पुनः आगमन पर उसका पांव जैतून के पर्वत पर पड़ेगा। वह यरूशलेम में उतरेगा और सियोन पर्वत पर से संसार पर राज्य करेगा। यहां पर लिखा है, और वह पवित्र स्थान ठहरेगा। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि वह यरूशलेम में लगभग 6 बार गया है, परंतु आज वह पवित्र स्थान नहीं है। वे वहां भी परमेश्वर से उतनी ही दूर हैं जितनी दूर अरब के अधीन यरूशलेम के निवासी हैं। निश्चय ही वे स्वदेश लौट आए हैं, परंतु परमेश्वर की ओर लौट कर नहीं आए हैं, जिसका परिणाम यह है कि उन्हें अपनी संपत्ति नहीं मिली है। अपना अधिकार पाना और अधिकार करने में बहुत अंतर है। मेरे प्रियो, आज हम में से कई लोग भी प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे उबद्याह उसके 18 पद में। यहां पर हम देखते हैं एसाव के घराने का अग्निकांड। आइए हम पढ़ें उबद्याह 18 पद। लिखा हुआ है, तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। यहां पर लिखा है कि एसाव का घराना नाश होगा, अर्थात कोई भी न बचेगा। एसाव का अंतिम न्याय होगा। मेरे विचार में एसाव का घराना वह राज्य है जो इस पृथ्वी के अनंत राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, अर्थात प्रभु यीशु के अधीनस्थ राज्यों में। क्यों? उनके घमंड के कारण, जो उन्होंने परमेश्वर के साथ में किया और वे परमेश्वर से दूर रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर से दूर रहना आपका निर्णय है, आज नहीं, संपूर्ण अनंत जीवन तक। आज आपके पास में मौका है कि आप परमेश्वर की ओर फिर सकते हैं, अपने जीवन के उन घमंड को अपने से अलग कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर घमंड से घृणा करता है। हम आगे देखते हैं कि सब बातों की पराकाष्ठा है। उबद्या उसके 19 पद में लिखा है, दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे के देश के लोग पलिस्तियों के अधिकारी होंगे और यहूदी एप्रेम और सामरिया के देहात को अपने भाग में कर लेंगे और विन्यामिन गिलाद का अधिकारी होगा। यहां पर हम देखते हैं कि यहूदा का दक्षिणी भाग एसाव का पर्वत पाएगा और पश्चिमी भाग पलिस्तीन नगर पाएगा। एप्रेम और सामरिया के देहात अर्थात उत्तरी खंड राष्ट्र में पुनः स्थापित होगा। बिन्यामिन को गिलाद मिलेगा जो यर्दन नदी के पूर्वी तट पर है। उबद्या 20 पद में लिखा है, इसराइलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं और यरूशलेमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सारपत में रहते हैं वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। यहां पर सारपत लबानोन में सोर और सैदा के मध्य स्थित है। दक्षिण देश नेगेब जो सिनै प्रायद्वीप है। इसराइल को परमेश्वर की प्रतिज्ञा का संपूर्ण प्रदेश फिर से मिल जाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को जिस देश की प्रतिज्ञा दी थी वह लगभग 300,000 वर्ग मील है। अपनी चरम सीमा में भी उन्होंने केवल 30,000 वर्ग मील देश पर ही अधिकार किया था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें 300,000 वर्ग मील स्थान दिए थे। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस जाति को अपने देश में रखने के लिए वह स्थान दिया था वे उसमें सफल नहीं रहे, परंतु परमेश्वर चाहता है कि इसराइली उसे प्राप्त करें। हम आगे पढ़ते हैं उबद्या उसके 21 पद जो इस पुस्तक का अंतिम पद है। लिखा है, उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सियोन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है उद्धार करने वाले। उद्धार करने वाले का अर्थ है उन्हें बचाने वाले। राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। आज परमेश्वर अपने उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त अबाधित आगे बढ़ रहा है। वह सियोन पर्वत पर अपना राज्य स्थापित करेगा। यहेजकेल नबी की पुस्तक 21 अध्याय उसके 27 पद के अनुसार अधिकृत राजा के आने तक परमेश्वर जाति जाति में उथल पुथल करता रहेगा। परमेश्वर का उद्देश्य उसे पाना है। जी हां, परमेश्वर को उद्देश्य प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, न तो एसाव की संतान, न ही कोई पशु। घमंडी मनुष्य भी परमेश्वर को एक इंच पीछे नहीं हटा सकता है। वही पृथ्वी पर राज्य करेगा। जी हां, पशुओं की नाए पृथ्वी को ही देखकर चलने वाले मनुष्य का सिर ऊंचा करने वाला केवल एक ही है, विकासवाद। आपका सिर ऊंचा नहीं कर सकता। घातक भौतिकवाद हम पर परमेश्वर का दंड ही लाएगा। परमेश्वर कहता है कि हे अकिंचन मानव, तू चाहे घमंड कर ले, मैं तुझे नीचे गिरा दूंगा। परंतु उसने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता के मुख से कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 32 पद में, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने ओर खींचूंगा। मेरे मित्रों, आप किस ओर बढ़ रहे हैं? घमंड, निराशावाद, अविश्वास, विद्रोह, नीचे और नीचे, नीचे गहरे खाई में? आपको जिस परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, आपका पुनरुद्धार निश्चित है। आपको घमंड का त्याग करके प्रभु यीशु जो उद्धार करता है उसके पास असहाय दशा में आना है। वह आपको ऊंचे पर उठाएगा। जी हाँ, वह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य जिसे उसने बनाया है नाश हो, परंतु वह चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए और उसके राज्य में शामिल हो। परंतु सवाल यह है कि क्या आज आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, या आज आप अपना जीवन घमंड में बिता रहे हैं? परमेश्वर आपको मौका देता है, आपको अवसर देता है ताकि आप उसकी ओर फिर जाएं। यहां पर इस पुस्तक में हमने देखा है दो भाइयों के द्वारा से दो वंशज उत्पन्न हुए, और हमने यह देखा कि एसाओ से एदोम नगर बसा, और यहां पर हमने देखा कि एदोम घमंड के कारण आगे बढ़ा और उसने अपने भाई को भी न रख छोड़ा, उसने उसे भी लूटा। आज हम में से कई लोग ऐसा ही कर रहे हैं, परंतु यदि आज परमेश्वर की ओर आप फिरेंगे तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और आपके जीवन में आशीषों की परिपूर्णता देंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन पहला यूहन्ना की पत्री 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं, या आप भी एसाव के समान, एदोम के समान हठी और घमंडी होना चाहते हैं? मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि इस पुस्तक के द्वारा आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है, और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में एक सटीक निर्णय लेंगे और परमेश्वर के लिए अपने आप को दे देंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि आप प्रभु की संगति में, उसके प्रेम में बढ़ते जाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जितनी हुकूमते यीशु के अधीन है, यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है,
सारी बीमारियां यीशु के अधीन है,
सारी बीमारियां यीशु के अधीन,
आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है,
आत्मिक शक्तियां
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।